हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम दूसरा स्कंद सातवां अध्याय श्लोक संख्या 6 और 7। इस आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंगा से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो नमस्ते ऋषभाय सात्वतां विदुरकाष्ठाय यमुः कुयोगिना नीरस्तसाम्या दिशयेन राधसा स्वधामनि ब्रह्मणोऽस्य ते नमः। यत्कीर्तनं यत् स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यत् श्रवणं यदर्हणम् लोकस्य सत्यो विदुनोति कल्मषम् तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। किरातहूणा नृपुलिन्दपुल्कषा आभीरशुम्भा यवनाकसादय येने च पापा यदपाश्रयाश्रया शुध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। प्रचोदताये न पुरा सरस्वती वितन्वता जस्य सतीं स्मृतिं विधि स्वलक्षणा प्रा दुरभूत् किलास्यत समीरिषीणां ऋषभ प्रसीदता। भूतैर्महद्भिः य इमां पुरो विभो निर्माय शीति यदमोषु पुरुष भुङ्क्ते गुणनशो दशषोडशात्मका सोलङ्कशिष्ट भगवान् वचांसि मे। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय विधसे पपुर्ज्ञानमयं सौम्यं यन्मुखम्बुरुहासवं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासम् ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीयुत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्टिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकम् भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशात्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम पुराण की जय। दूसरा स्कंद अध्याय 7 जिसका शीर्षक है विशिष्ट कार्यों के लिए निर्धारित अवतार। ब्रह्मा जी नारद मुनि को भगवान के विभिन्न अवतारों के विषय में बता रहे हैं और आज श्लोक नंबर 6 में धर्म और मूर्ति के गर्भ से उत्पन्न होने वाले भगवान नर नारायण जो कि सदैव बद्रिक आश्रम में तपस्या करते रहते हैं जन कल्याण के लिए, उनके विषय में बता रहे हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं धर्मस्य दक्षु दुहिता यजनिष्ठ मूर्त्या नारायणो नर इति स्वतप प्रभाव दृष्ट्वात्मनो भगवतो नियमावलोपम् देवस्तत्त्वनङ्ग प्रतना घटितुं न शोको धर्मस्य दक्ष दुहिता यजनिष्ठ मूर्त्या नारायणो नर इति स्वतप प्रभाव दृष्ट्वात्मनो भगवतो नियमावलोपम् देवस्त्वनङ्ग प्रीतन कटितुं न शोको धर्मस्य दक्षु दुहित यजनिष्ठ मूर्त्या नारायणो नर इति स्वतप प्रभाव दृष्ट्वात्मनो भगवतो नियमावलोपम् देवस्त्वनङ्ग प्रीतन घटितुं न शोक। शब्दार्थ धर्मस्य दक्ष दुहितर, धर्मस्य यानी धर्म की, दक्ष यानी दक्ष प्रजापति से एक, दुहितर यानी पुत्री, अजनिष्ठ यानी जन्म लिया, मूर्त्यम यानी मूर्ति नाम की, नारायण नर इति, नारायण यानी नारायण, नर यानी नर, इति माने इस प्रकार, स्वतप अपनी तपस्या के प्रभाव यानी शक्ति से, यानी अभी ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि दक्ष प्रजापति की 9 कन्याएं थी, उनमें से एक मूर्ति था, मूर्ति नाम की कन्या थी जिनका विवाह धर्म के साथ हुआ और उनके गर्भ से कौन उत्पन्न हुए, नारायण नर इति, नारायण और नर नाम से भगवान का एक स्वरूप उत्पन्न हुआ। स्वतप मतलब उन्होंने अपनी बहुत सारी तपस्या की और उस तपस्या के प्रभाव यानी शक्ति से दृष्टवात्मा, आत्मना यानी अपना भगवत श्री भगवान का नियम अवलोपम यानी व्रत को भंग करके देवस्य नैसर्गिक सौंदर्य भगवान नर और नारायण के स्वरूप में जब तपस्या कर रहे थे तो देवस्य अनंग प्रीतना कामदेव जो हैं उनके वो अपनी बहुत सारी टीम को लेकर, बहुत सारी अप्सराओं को लेकर उनकी तपस्या को समाप्त करने के लिए आए, घटित यानी करने के लिए न शोको। लेकिन क्या भगवान को कभी कामदेव परास्त कर सकते हैं? न, मतलब कभी नहीं, शोको मना संभव हो सकता है, भगवान कभी भी किसी भी विकार से प्रभावित नहीं हो सकते। भगवान सारे गुणों से ऊपर है। भगवान को प्रकृति के गुण आकर्षित नहीं करते, और यही नर और नारायण जब इस भौतिक जगत में तपस्या कर रहे थे, तो जब कामदेव अपनी अप्सराओं के साथ उनको उनकी तपस्या को समाप्त करने के लिए आए थे, तो भगवान तो अपने ही शरीर से बहुत सारी अप्सराएं निकाल के दिखा रहे थे कि ये तुम्हारी क्या अप्सराएं जो मुझे विचलित करेंगी, मेरे पास मेरे अपने स्वयं मेरे पास तो ऐसी करोड़ों अप्सराएं हैं जो कि इनसे भी ज्यादा सुंदर है, मैं इनसे ज्यादा क्या क्या प्रभु। तो भगवान जो है वो पूर्ण है। भगवान को आनंद के लिए भौतिक किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। भगवान संपूर्ण आनंद अपने आप से प्राप्त कर सकते। हमें आनंद प्राप्त करने के लिए भौतिक वस्तुओं की आवश्यकता होती है, इसलिए हमारी साधना जो है वो डिस्टर्ब होती है। लेकिन भगवान जब तपस्या करने आते हैं तो उनकी तपस्या को समाप्त कर सके न शोको किसी के लिए संभव नहीं है। अनुवाद देखिए, उन्होंने अपनी तपस्या तथा आत्म संयम की विधि प्रदर्शित करने के लिए धर्म की पत्नी तथा दक्ष की पुत्री मूर्ति के गर्भ से नर तथा नारायण जुड़वे रूप में जन्म लिया। कामदेव की सखियां स्वर्ग की सुंदरियां उनका व्रत भंग करने आईं, किंतु वे असफल रहीं, क्योंकि उन्हें भगवान के शरीर से अपने समान अनेक सुंदरियां उत्पन्न होती दिखाई पड़ी। श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति से तात्पर्य में ब्रह्मचर्य वृत्त के विषय में सुनाएंगे, तपस्या के विषय में समझाएंगे। और तपस्या क्योंकि हमारे जीवन का मूल उद्देश्य है, ये मनुष्य जीवन स्पेशली तपस्या के लिए ही प्राप्त हुआ है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य है जीव ऐसी दिव्य तपस्या करे कि उसे वास्तविक धाम प्राप्त हो जाए। लेकिन यहाँ संसार में आजकल केवल और केवल इंद्रिय तृप्ति की शिक्षा दी जाती है। जीव का लक्ष्य बन गया है कि कैसे मैं अपनी हवस को, अपनी काम वासना को तृप्त करूं, बस इसी के लिए जीवन रह गया। लेकिन भगवान नर नारायण के स्वरूप में हमें तपस्या करना और तपस्या के लिए ही जीवन बना है, इसके विषय में शिक्षा देते हैं। श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं, भगवान सभी वस्तुओं के स्रोत है और वे समस्त प्रकार की तपस्याओं तथा आत्म संयम के भी उद्गम है। आत्म साक्षात्कार में सफलता प्राप्त करने के लिए मुनिगण तपस्या का महान व्रत लेते हैं। मानव जीवन ब्रह्मचर्य के महान व्रत के साथ साथ ऐसी तपस्या के लिए ही मिला है। तपस्या के कठोर जीवन में स्त्रियों की संगति के लिए कोई स्थान नहीं है, और चूंकि मनुष्य जीवन तपस्या के निमित्त है, आत्म साक्षात्कार के निमित्त है, इसीलिए सनातन धर्म अथवा वर्णाश्रम धर्म पद्धति में जीवन के तीनों स्तरों पर स्त्री से दूर रहने की कठोर सलाह दी गई है। सांस्कृतिक विकास क्रम के अनुसार जीवन के चार विभाग किए जा सकते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास। जीवन की प्रथम अवस्था में जो प्रथम 25 वर्षों तक रहती है, मनुष्य को प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में ब्रह्मचारी के रूप में शिक्षा दी जानी चाहिए, जिससे उससे वह यह समझ सके कि स्त्री ही इस भौतिक संसार की वास्तविक बंधक शक्ति है। यदि कोई बद्ध जीव जीवन के बंधन से मुक्ति चाहता है तो उसे स्त्री के रूप में आकर्षित से मुक्त होना चाहिए। जीवात्माओं के लिए स्त्री ही सम्मोहक तत्व है, किंतु नर रूप विशेष रूप से मनुष्य जीवन में तो आत्म साक्षात्कार के निमित्त है। सारा संसार स्त्री के आकर्षण के जादू से गतिशील है, और मनुष्य स्त्री से जुड़ा नहीं कि तुरंत ही वह भौतिक बंधन की कठोर ग्रंथि का शिकार बन जाता है। स्त्री के साथ जुड़ाव ही हो जाने के बाद ही विशेष रूप से स्वामित्व की झूठी प्रतिष्ठा के नशे के अंतर्गत भौतिक जगत पर अपना प्रभुत्व जताने की लालसा उत्पन्न हो जाती है। घर भूमि तथा सनातन संतान प्राप्त करने, समाज में महत्वपूर्ण बनने, जाति तथा जन्मभूमि के लिए प्रेम, धन के लिए लोलुपता, ये सब जो माया जाल अथवा भ्रामक स्वप्न के तुल्य है मनुष्य को घेर लेता है और मनुष्य अपने जीवन के असली उद्देश्य को भूल जाता है और आत्म साक्षात्कार की दिशा में उसकी प्रगति अवरुद्ध हो जाती है। यहाँ शिला प्रभुपाद जी एक बहुत ही महत्वपूर्ण मैसेज दे रहे हैं कि वैसे तो भगवान जो है वो प्रत्येक वस्तु के स्रोत हैं। अब प्रत्येक वस्तु के स्रोत भगवान है तो तपस्या तथा आत्म संयम के उद्गम भी भगवान है। और भगवान जो है वो जीव को ये सिखाते हैं कि मनुष्य जीवन जो है वो स्पेशली तपस्या करने के लिए मिला है। कौन सी तपस्या? भगवान ऋषभ अपने पुत्रों को कहते हैं, नायम देहो देह बाजा निर्लोके कष्टान कामन अहट्टे विट्ट पुजा, ये तपो दिव्यम पुत्र काये न चक। यानी ये जो मनुष्य देह मिला है ना वो कुत्ते और सुअरों के लिए, सुअरों की तरह केवल इंद्र तृप्ति के लिए नहीं मिला है। इस क्यों मिला है? ये तपो दिव्यम, दिव्य तपस्या करके जीवन को शुद्ध करके आत्म संयम करके भगवत प्राप्ति करने के। कितना महान कार्य किया जा सकता है इस जीवन से। और आज मनुष्य अपने जीवन को केवल जानवरों की तरह, इंद्र तृप्ति, सेक्स, भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति, धन की प्राप्ति, इसी में खत्म कर रहा है। तो श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं कि यदि तपस्या किया जाए करने के लिए मनुष्य जीवन मिलता है, तो तपस्या के कठोर जीवन जो है वो केवल और केवल तभी संभव है कि जब जीव स्त्री के संग से दूर रहे। क्योंकि स्त्री का जो संग है मनुष्य को तपस्या से, तपस्या के स्तर से नीचे गिरा देता है। इसीलिए हमारे जो वर्णाश्रम पद्धति है उसमें चार स्तर है ना, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। उसमें से ब्रह्मचर्य में स्त्री की संगति से दूर रहने के लिए सलाह दी जाती है, वानप्रस्थ में स्त्री की संगति से दूर रहने के लिए सलाह दी जाती है, संन्यास में तो अपनी पत्नी से भी दूर रहने की सलाह दी जाती है। तो सिर्फ और सिर्फ गृहस्थ आश्रम ऐसा है जिसमें कि 25 से 50 यानी सिर्फ 100 में से 25% जो है जीवन ऐसा है जिसमें मनुष्य जो है वो स्त्री की संगति कर सकता है। वो भी ऐसे नहीं कि जरूरी गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया जाए, वास्तव में तो ब्रह्मचर्य के बाद नैष्ठिक ब्रह्मचर्य बनके तपस्या कर देनी चाहिए। स्त्री की संगति कितना जीव को दूषित कर देती है कि वो फिर आत्म साक्षात्कार के लिए आगे बढ़ ही नहीं सकता। मनुष्य, यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बोलते, मनुष्य स्त्री से जुड़ा नहीं के भौतिक बंधन की कठोर ग्रंथि का शिकार बन जाता है फौरन से। क्यों बन जाता है? क्योंकि जब वो अकेला होता है, ब्रह्मचारी होता है, तो उसको किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती है, किसी वस्तु पर प्रभुत्व जताने की लालसा नहीं होती है। लेकिन जैसे ही स्त्री से संबंध जोड़ता है, उसको विवाह करने से पहले घर चाहिए है ना, भूमि चाहिए, फिर वो घर गृहस्थी में फंस जाता है। और जब घर गृहस्थी में फंस जाता है तो जाहिर सी बात है विवाह करने के बाद संतान की उत्पत्ति होती है। संतान की जब उत्पत्ति होती है तो उसको धन कमाने की आवश्यकता पड़ती है। फिर वो हर किसी भौतिक वस्तु की तरफ आकर्षित होता है, जन्मभूमि से प्रेम हो जाता है, धन के लिए लालच हो जाता है, माया जाल अथवा भ्रामक स्वप्न के तुल्य है ये सब। और ये सब मनुष्य को इतना घेर लेते हैं कि वो अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य से बहुत दूर चला जाता है। आत्म साक्षात्कार की दिशा में उसकी प्रगति बिल्कुल समाप्त हो जाती है, क्योंकि अब वो घर गृहस्थी में इतना अपने आप को जकड़ लेता है। बोलते हैं, अब जाहिर सी बात है, हम गृहस्थ हैं, हमारी पत्नी है, बच्चे हैं, उनके लिए सोचेगा ना, अपने घर में किस चीज की वस्तु है, कौन किस चीज की कमी है, उसके लिए सोचेगा ना, तो वो कब कहाँ जाकर ना भगवान की तपस्या करने के लिए उसके पास समय बचेगा। तो ये सबसे बड़ी रुकावट है, ये स्त्री के साथ संगति जो है। इसलिए कहते हैं महाप्रभु, कहते हैं कि असत्य संग त्याग यही वैष्णव आचार, स्त्री संगी एक साधु कृष्ण अभक्त आर। सबसे पहले अगर वैष्णव बनना है ना, तो सबसे पहले क्या करो, असत्य का संग त्यागो। किसी ने पूछ लिया, महाप्रभु असत्य क्या, किसका संग त्यागे, तब बोला स्त्री संगी एक साधु। जो स्त्री का संग करता है ना, उससे दूर रहो। और कृष्ण अभक्त आर, जो कृष्ण का भक्त नहीं है ना, उसके संग से दूर रहो। तो यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, ब्रह्मचारी जो प्रायः उच्च जाति का अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय अथवा वैश्य जाति का बालक होता है, प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में 5 वर्ष की अवस्था से 25 वर्ष की अवस्था तक शिक्षा प्राप्त करता है और जीवन के मूल्यों तथा जीविका के लिए विशिष्ट शिक्षा प्राप्त करने का अनुभव प्राप्त करता है। तत्पश्चात ब्रह्मचारी को घर जाने दिया जाता है, जहां वह ग्रस्त जीवन में प्रवेश करने के लिए किसी अनुकूल स्त्री के साथ विवाह करता है। कि रूल ये है कि 25 साल तक तो उसको इतना नष्ट ब्रह्मचारी है ना, शिक्षा दी जाती है कि जीवन का क्या लक्ष्य है उसके विषय में बताया जाता है, बहुत सारी शिक्षाएं उसको बताने के बाद जब वो 5 से लेकर 25 साल तक उसकी बहुत ही सुंदर शिक्षा देने के बाद उसको घर जाने दिया जाता है। तब तक तो वो गुरुकुल में स्त्री के बिल्कुल संग नहीं प्राप्त होता, वहां जगह पर रहता है। और फिर घर जाने के बाद वो सोचता है कि अब मुझे विवाह करना चाहिए। किंतु श्री प्रभुपाद जी यहाँ पर एक और बात बता रहे हैं, ऐसे अनेक ब्रह्मचारी होते हैं जो गृहस्थ बनने के लिए घर नहीं जाते, किंतु वे स्त्रियों से किसी प्रकार का संपर्क ना करके नैष्ठिक ब्रह्मचारी जीवन का बिताते हैं। वे संन्यास आश्रम स्वीकार करते हैं। वे भली भांति जानते हैं कि स्त्री की संगति एक अनावश्यक झंझट है, जिससे आत्म साक्षात्कार में बाधा पड़ती है। यहाँ श्री प्रभुपाद जी बता रहे, जिनके पास बुद्धि होती है ना, वो तो इस झंझट में कभी पढ़ना ही नहीं चाहते। ये स्त्री संग जो है वो जीव को इतना उसके जीवन को दूषित कर देता है कि भगवान से बहुत दूर। मनुष्य विवाह करने के बाद जो है वो चाहकर भी सीरियसली भक्ति नहीं कर सकता, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती है ना। इसलिए जो बुद्धिमान होते हैं वो नहीं इस झंझट में नहीं पढ़ते। और श्री प्रभुपाद जी आगे कहते हैं कि वो भलीभांति जानते हैं कि स्त्री की संगति एक अनावश्यक झंझट है, जिससे आत्म साक्षात्कार में बाधा पड़ती है। और क्यों किया जाता है विवाह, उसके लिए श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, क्योंकि आयु विशेष में कामेच्छा अत्यंत प्रबल होती है, इसलिए गुरु ब्रह्मचारी को विवाह करने की अनुमति दे सकते हैं। यह छूट केवल उन्हें दी जाती है जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी नहीं रह सकते, और ऐसा भेद कर पाना प्रामाणिक गुरु के लिए ही संभव है। इस प्रकार तथाकथित परिवार नियोजन का कार्यक्रम अनावश्यक है। जो ग्रस्त ब्रह्मचर्य की सम्यक शिक्षा प्राप्त करने के बाद शास्त्रानुमोदित रीति से स्त्री की संगति करता है, वह कुत्ते बिल्लियों की तरह का ग्रस्त नहीं होता। यहाँ शिला प्रभुपाद जी एक बात बता रहे हैं कि वैसे तो ग्रस्त जीवन फंस कर इस झंझट में आकर अपने आत्म साक्षात्कार से दूर होने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक आयु ऐसी आती है कि जब युवा अवस्था आती है तो कामेच्छा इतनी बढ़ जाती है कि वो गुरु महाराज जो होते हैं वो अपने शिष्य को विवाह करने की अनुमति देते हैं, वो सिर्फ उनके लिए जो इस कामेच्छा को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो ये जो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो वास्तविक गुरु महाराज होते हैं, प्रमाणिक गुरु महाराज, वो भेद कर सकते हैं कि किसको ब्रह्मचारी बनाना चाहिए, किसको गृहस्थ बनाना चाहिए, और अगर उसकी शिक्षा ब्रह्मचर्य अवस्था में अच्छे तरीके से उसको शिक्षा दी जाती है, फिर वो कुत्ते बिल्लियों यानी जानवरों की तरह अपना गृहस्थ जीवन केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं बिताता है। ऐसा गृहस्थ 50 वर्ष की आयु के पश्चात स्त्री की संगति त्याग कर वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करके स्त्री के बिना रहने का अभ्यास करता है। 50 से 75 तक वो फिर 25 साल तक अपनी साधना को दृढ़ करता है, स्त्री की संगति को छोड़ देता है और आसक्ति को समाप्त कर देता है। आजकल क्योंकि ब्रह्मचर्य अवस्था में जीव शिक्षा लेता ही नहीं है, इसलिए जैसे जैसे आयु बढ़ती है ना, वैसे वैसे आसक्ति और अधिक बढ़ने लगती है। और पहले तो वो सोचता है कि ठीक है, धीरे धीरे सोचता है अभी बच्चे पैदा हो गए हैं, उनके एजुकेशन के बाद, उनके विवाह के बाद मैं क्या करूंगा, मैं भगवान की भक्ति करना शुरू करूंगा, जस्ट सोचता है। और जैसे विवाह हो जाता है ना बच्चों का, आसक्ति और बढ़ जाती है। और बच्चों का विवाह जब हो जाता है, उनके जो बच्चे होते हैं उनके प्रति जो उनका अनुराग होता है, उनका प्रेम होता है, वो तो अपने बच्चों से भी अधिक हो जाता है। फिर सारा दिन अपने पोते पोतियों नवासियों बेटे के बच्चों बेटियों के बच्चों में इतना आसक्त हो जाता है कि उसको याद ही नहीं रहता कि मैंने जन्म क्यों हुआ है। उसको अपने जीवन का लक्ष्य ही भूल जाता है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि ब्रह्मचर्य अवस्था में उसने कोई शिक्षा ग्रहण की नहीं है। तब श्रील प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं कि जब यह अभ्यास पूरा हो जाता है तब वानप्रस्थ सन्यासी ग्रहण करता है तथा स्त्री से यहाँ तक कि अपनी विवाहित पत्नी से भी अपने को अलग कर देता है। क्योंकि अगर जरा से भी आसक्ति संसार में रह गई ना, तो समझो हमारा मनुष्य जीवन असफल हो जाएगा, हम फेल हो जाएंगे। और वापस जब फेल होता है ना जीव, तब उसे वापस से उसी क्लास में पढ़ना पड़ता है ना। और जिस तरह से एक स्टूडेंट एक क्लास में फेल हो जाता है तो उसका एक साल जाया हो जाता है, लेकिन एक मनुष्य यदि सदैव अपने जीवन में आसक्ति में रहेगा ना, तो उसका पूरा जीवन जाया हो जाता है। और उसे दोबारा से इस आत्म साक्षात्कार के लिए दूसरा जन्म लेना पड़ता है। आज इस जन्म में हमारे पास स्वस्थ शरीर है, फिजिकली फाइनेंशियली मेंटली हम एकदम स्वस्थ हैं। आज हमारे पास गुरु है, ऐसा एनवायरमेंट है, ऐसा भगवान ने हम पर ऐसी कृपा की है कि हम भागवतम श्रवण कर रहे हैं, भगवत गीता को श्रवण कर रहे हैं, हम नाम जप कर रहे हैं, गुरु आदेश का पालन कर रहे हैं। कोई गारंटी नहीं है कि यदि ये जन्म बीत जाएगा तो हम अगर स्वर्ग में चले गए पुण्यों के प्रताप से, फिर वापस जब आएंगे तो क्या ये सब वापस हमें मिलेगा? क्योंकि महाप्रभु की कृपा से हमें महामंत्र मिला है जो बड़ी सरलता से हमें भगवत प्राप्ति करा सकता है। और महाप्रभु जो है वो ब्रह्मा जी के पूरे एक दिन में यानी 4,32,00,000,000 वर्ष में सिर्फ एक बार जब सातवां मन्वंतर होता है उसके 28वें कलयुग में आते हैं, है ना। जब ब्रह्मा जी के एक दिन में 1,000 बार चतुर्युगी होती है और 1,000 बार चतुर्युगी बीतने के बाद ब्रह्मा का दिन समाप्त होता है। और अभी जो है वो गोल्डन समय है जब 1,000 चतुर्युगी के बाद जब सातवां मन्वंतर होता है। अब देखो ये जो सातवां मन्वंतर है उसी के द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण आते हैं और उसी के कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु आते हैं। अभी सातवां मन्वंतर है, उसके बाद आठवां होगा, उसके उस मन्वंतर के 71 चतुर्युग, उसके बाद नवा, दसवां, ग्यारहवां, बारहवां, तेरहवां, चौदहवां, 14 मन्वंतर हो जाएंगे ना, उन सबके 71 चतुर्युग, फिर वापस 1 2 3 4 5 6 7, फिर वापस से 7 और, यानी कि टोटल 1000 चतुर्युगी के बाद जब वापस से सातवां मन्वंतर आएगा, उसका जो 28वां चतुर्युग आएगा उसमें जो कलयुग आएगा, फिर ये महामंत्र मिलेगा, क्योंकि स्वर्ग में चले गए 10,000 साल के बाद आएंगे, 10,000 साल के बाद ये महामंत्र तो बिल्कुल लुप्त हो जाएगा। ये तो हमारे लिए समझो स्वर्ण युग है जिसमें हम बहुत ही सरलता से भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, जितना जल्दी हो सके इस गृहस्थ के झंझट से, इससे अनासक्ति प्राप्त करके संन्यास ले लेना चाहिए। स्त्री से वियुक्त होने की पूरी योजना के अध्ययन से प्रतीत होता है कि आत्म साक्षात्कार के मार्ग में स्त्री बाधक है और भगवान नारायण रूप में स्त्री से अलग होने की शिक्षा देने के लिए ही प्रकट हुए। दृढ़ ब्रह्मचर्य के तपस्वी जीवन से ईर्ष्यालु होकर उसका व्रत भंग करने के उद्देश्य से देवता कामदेव के सैनिकों को भेजते हैं, किंतु भगवान के समक्ष उनकी एक भी नहीं चलती, क्योंकि जब दैवी सुंदरियों ने देखा कि भगवान की योग माया से असंख्य सुंदरियां प्रकट हो सकती हैं और उन्हें बाह्य रूप से आकर्षित होने की आवश्यकता नहीं है। एक आम कहावत है कि हलवाई कभी मिठाई से ललचाता नहीं है। हलवाई जो सदा ही मिठाइयां बनाता है उन्हें खाने की कोई इच्छा नहीं रखता। इसी प्रकार भगवान अपनी अलादनी शक्ति से असंख्य दैवी सुंदरियां उत्पन्न कर सकते हैं, अतः वे भौतिक संसार की छद्म सुंदरियों से लेश मात्र भी आकर्षित नहीं होते। यहाँ श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जब देवताओं ने देखा, इंद्र ने देखा कि ये तो नर नारायण इतनी तपस्या कर रहे हैं और भगवान की ऐसी माया है, मोहयन्ति यत् सूरया, वो बड़े बड़े देवताओं को भी मोहित कर देती, तो देवताओं ने सोचा कि भगवान की तपस्या, नर नारायण की तपस्या को खत्म करने के लिए कामदेव अपनी पूरी सारी जो सुंदरियां उनको लेके गए। लेकिन वो सुंदरियां ये देखकर हैरान हो गए कि भगवान तपस्या कर रहे और उनके शरीर से असंख्य दैवी सुंदरियां जो उनसे करोड़ों गुना अधिक सुंदर है वो निकलती है। अब जो भगवान जो संपूर्ण सृष्टि की रचना करते हैं, संपूर्ण सुंदरता के उद्गम है, जब उनके अंदर से ही इतनी सारी सुंदरियां प्रकट हो रही हैं, उनकी जो अलादनी शक्ति है उन्हीं के तो अंश हैं संसार की जितनी भी सुंदर स्त्रियां हैं वो, तो भगवान जो कि संपूर्ण सुंदरता के स्वामी हैं, वो भला इन कामदेव के साथ आई हुई उसकी जो जितनी भी सेना है, जितनी सुंदरियां हैं, उनसे कैसे आकर्षित होते हैं। और श्री प्रभुपाद जी एग्जाम्पल दे रहे हैं, जो हलवाई होता है वो मिठाई की ओर आकर्षित नहीं होता, क्योंकि सारा दिन तो मिठाई खाता रहता, देखता रहता, वो जो आकर्षित होता है वो होता है जो कि कभी ना देखता है और फिर देख अचानक से उसके सामने कोई सुंदर वस्तु आती है, सुंदर स्त्री आती है तो वो लट्टू हो जाता है। लेकिन भगवान तो आत्म तृप्त है, वो इन सुंदरियों से लेशमात्र भी आकर्षित नहीं होते। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो ये नहीं जानता वह मूर्खतावश दोष देता है कि भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन की रासलीला में स्त्रियों के साथ, या कि द्वारिका में अपनी 16,000 पत्नियों के साथ रमण किया। भगवान तो केवल अपने भक्तों को आनंद देने के लिए आते हैं, भगवान के अंदर कोई काम वासना नहीं है। भगवान जो है वो केवल और केवल अपने भक्त संतों के साथ प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए। भगवान तो हमें ये बताते हैं कि तुम जिस संसार में प्रेम को ढूंढ रहे हो, जिस संसार में आनंद को ढूंढ रहे हो, वो इस संसार में आपको नहीं मिलेगा। जब मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा तभी तुम्हें वास्तविक आनंद प्राप्त होगा। और भगवान को किस तरह से अपना सर्वस्व न्यौछावर किया जाता है वो दिखाने के लिए संसार में आकर वो गोपियों के साथ प्रेम का आदान प्रदान करते हुए हमें दिखाते हैं कि देखो यहाँ पर है रियल आनंद, यहाँ मेरे साथ संबंध जोड़ने में आपको वास्तविक आनंद प्राप्त होगा। भौतिक किसी भी व्यक्ति के साथ आपका जब संबंध जुड़ेगा तो वो आपके लिए दुख का कारण बनेगा, क्योंकि अनित्यम असुखम लोकम, ये संसार में आपको यदि किसी का प्रेम प्राप्त हो भी जाएगा तो कितने दिन तक प्राप्त होगा, क्योंकि मृत्यु सर्व हरश्याम, मृत्यु जब आएगी या तो उसकी या आपकी, क्योंकि जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म मृत्यस्य च, जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु आवश्यक होगी। तो फिर आपकी होगी या पहले उसकी होगी, जिसकी भी होगी जो रह जाएगा वो तो दुखी हो जाएगा। इसलिए भौतिक किसी भी व्यक्ति के साथ प्रेम नहीं, केवल उसके साथ व्यवहार किया जाता है, क्योंकि संबंध नहीं जुड़ सकता। हम शरीर हैं ही नहीं, ये जो जितने भी संबंध हैं वो तो केवल शारीरिक के हैं। हमारा संबंध जो है वो सिर्फ और सिर्फ भगवान के साथ है, और ये मनुष्य जीवन इसीलिए मिला है कि उस भगवान के साथ जो हमारा प्रेम का संबंध है उसको डिवेलप किया जाए। अगर भौतिक व्यक्तियों का आकर्षण ही समाप्त नहीं होगा तो भगवान के साथ संबंध कैसे जुड़ेंगे। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवान तो आत्मतृप्त है, इसलिए वो इन स्वर्ग की अप्सराओं से कुछ भी मोहित नहीं हुए। आगे ब्रह्मा जी बता रहे हैं, श्लोक नंबर 7, कृपया मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, कामं दहन्ति कृतिनो ननु रोष दृष्ट्या, रोषं दहन्तं उत्ततेन दत्यसयम्, सोयं यदन्तरमलं प्रविशन् बिभेति, काम कथं नु पुनरस्य मन श्रयेत, कामं दहन्ति कृतिनो ननु रोष दृश्या, रोषं दहन्तमुततेन दहत्यसहयम्, सोयं यदन्तरमलं प्रविशन् बिभेति, काम कथं नु पुनरस्य मन श्रयेत, कामं दहन्ति कृतिनो ननु रोष दृष्ट्या, रोषं दहन्तमुततेन दत्यसहयम्, सोयं यदन्तरमलं प्रविशन् बिभेति, काम कथं नु पुनरस्य मन श्रयेत, कामं दहन्ति कृतिनो ननु रोष दृश्या। कामं यानी वासना, दहन्ति यानी दंड देते हैं, कृतिना बड़े बड़े अग्रणी, ननु लेकिन रोष दृश्या यानी क्रोध चित्वन से। यहाँ पर श्री ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि जब काम के स्वरूप में जब भी काम देव जो है वो अपनी सेना को लेकर आता है ना किसी की तपस्या करने के लिए, तो बड़े बड़े जो अग्रणी हैं वो उनको क्रोध आ जाता है। और क्रोध कैसे आता है, क्रोध जब आता है तो वो कामदेव को भस्म कर देते हैं। यहाँ पर वो लीला दिखा रहे हैं जब शिवजी जो है वो जब तपस्या कर रहे थे तब काम वासना कामदेव जब अपनी अप्सराओं को लेकर उनका व्रत भंग करने के लिए आए थे तो काम वासना ने तो उनको पराजित नहीं किया लेकिन क्रोध को वो नहीं जीत सके और कामदेव को ही भस्म कर दिया, है ना। रोषम दहन्त्यम उत तेन दहन्त्य सहया, रोषम यानी क्रोध, दहन्त्यम यानी अभिभूत, उत यद्यपि ते यानी वे न दहन्ति, काम को कंट्रोल कर दिया परंतु क्रोध को वो कंट्रोल नहीं कर सके, है ना, क्रोध तो उनको इतना आया कि उन्होंने कामदेव को ही भस्म कर दिया। आगे कहते हैं सोयम यदंतरमलम प्रविशन विभेदा, क्योंकि क्रोध को वश में करना उनके लिए दुस्सहय हो गया था, असह्य हो गया था, इसलिए सोयम वह उसको यत क्योंकि अंतरम भीतर अलम यानी फिर भी प्रविशन यानी भीतर जाकर विभेदी भयभीत होता है। काम वासना कामम कथम न पुनरस्य मन श्रयेत, भगवान के मन में तो ऐसा क्रोध भी कभी नहीं आता है ना। स्वयं यदंत अमलम प्रविशन विभेता, भगवान के मन में क्रोध नहीं है। क्रोध तो काम से ज्यादा ताकतवर हुआ ना, क्योंकि शिव जी ने काम को तो कंट्रोल कर दिया लेकिन क्रोध को नहीं। लेकिन भगवान अपने क्रोध को कंट्रोल किए हुए हैं। दुर्वासा ऋषि जब भगवान की छाती पर लात मारते हैं, सोच सकते हैं हम जैसे साधारण व्यक्ति को भी यदि कोई थोड़ा सा भी स्पर्श करके या थप्पड़ मार के जाए तो क्या हम अपने क्रोध को कंट्रोल कर सकेंगे? भले कितना है अपने आप को भगत सोचता है, लेकिन जब उसके ऊपर बात आती है ना तब वो क्रोध करना शुरू हो जाता है, है ना। जब कितना ही बड़ा भक्त होगा, भक्ति की बड़ी बड़ी बातें करेगा, प्रचार करेगा, उसको आके कोई देखे एक थप्पड़ मारे, देखो उसके ऊपर क्या गुजरती है, है ना, क्रोध को। लेकिन भगवान जो साक्षात पूरे संसार की पूरी सृष्टि के जो स्वामी है, उनको आकर भृगु ऋषि ने छाती पर लात मारी और भगवान ने क्या कहा? भगवान ने कहा हे प्रभु, मेरी छाती तो कितनी कठोर है, आपके कोमल चरण कमलों पर कितना आहत हुआ होगा, उनको कितना कष्ट हुआ होगा, आप मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरे कारण आपको कष्ट हुआ। ये नहीं बोला कि तुम पागल हो क्या, मैं आराम से बैठा हूँ, मुझे क्या तुम, मैंने तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, तुम क्यों मुझे लात मार रहे हो। तो भगवान जो क्रोध को कंट्रोल कर सकते हैं, कर चुके हैं। काम कथम नु पुनरस्य मन श्रयेत, तो काम वाला उनके मन को किस तरह से विचलित कर सकता है। अनुवाद देखिए, शिव जैसे महापुरुष अपनी रोष पूर्ण चितवन से वासना यानी काम को भीतर उसे दंड तो सॉरी काम को जीत कर उसे दंडित तो कर सकते हैं, किंतु वे स्वयं अपने क्रोध के अत्यधिक प्रभाव से मुक्त नहीं हो सकते। ऐसा क्रोध कभी भी उनके यानी भगवान के हृदय में प्रवेश नहीं कर पाता, क्योंकि वे इन सब बातों से परे हैं। तो फिर भला उनके मन में काम को आश्रय कैसे प्राप्त हो सकता है? श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं जब शिव जी कठिन तपस्या में तल्लीन थे तो कामदेव ने अपना काम बाण उन पर छोड़ा। शिव जी ने घोर कुपित दृष्टि से कामदेव की ओर देखा तो उसका शरीर तुरंत भस्म हो गया। शिव जी इतने शक्तिशाली होते हुए भी क्रोध के प्रभाव से मुक्त नहीं थे, किंतु भगवान विष्णु के आचरण में कभी भी क्रोध करने की कोई घटना नहीं पाई जाती। इसके विपरीत जब भृगु मुनि ने जानबूझकर उनके वक्षस्थल पर उनकी परीक्षा लेने के लिए पाद प्रहार किया तो मुनि पर क्रुद्ध होने की बजाय भगवान ने यह कहकर क्षमा मांगी कि उनका वक्षस्थल अत्यंत ही कठोर है, कहीं मुनि के पांव में ज्यादा चोट तो नहीं लगी। भगवान के वक्षस्थल पर अंकित भृगुपाद चिन्ह उनकी सहिष्णुता का प्रतीक है, अतः जब भगवान क्रोध से किसी प्रकार प्रभावित नहीं होते हैं तो फिर क्रोध से कम शक्तिशाली काम इच्छा के लिए वहाँ किस तरह कोई स्थान हो सकता है? जब काम या इच्छा की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न होता है, अतः जब क्रोध अनुपस्थित हो तो फिर काम कैसे उत्पन्न हो सकता है? भगवान को आप काम कहा जाता है क्योंकि वे अपनी इच्छाओं की तुष्टि स्वयं कर सकते हैं। उन्हें अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होती। भगवान असीम है, अतः उनकी इच्छाएं भी असीम है। भगवान के अतिरिक्त समस्त जीवों भगवान के अतिरिक्त समस्त जीव आत्मा हर तरह की से सीमित है, अतः जो सीमित है वे असीम की इच्छाओं की तुष्टि कैसे कर सकते हैं। निष्कर्ष यह निकलता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में ना तो काम है ना क्रोध है, और यदि कभी उनमें इनका प्रदर्शन किया जाता है तो इस परम आशीर्वाद यानी वरदान समझना चाहिए। श्री प्रभुपाद की जय। यहाँ श्री प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर शिक्षा दे रहे हैं कि भगवान असीम है, भगवान की इच्छाएं भी असीम है। ऐसा नहीं है भगवान के अंदर इच्छा है तभी तो हमारे अंदर है, भगवान के अंश हैं। इसी लेकिन हम में और भगवान में फर्क क्या है कि हमें अगर किसी वस्तु की इच्छा होती है तो हमें इस भौतिक जगत से उसको प्राप्त करना पड़ता है। हम खुद स्वयं किसी वस्तु को प्रकट करके उससे संतुष्ट नहीं हो सकते, लेकिन भगवान जो है वो अब तक काम है। भगवान को किसी और वस्तु से आनंद लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान के अंदर ही हर प्रकार का आनंद है। वो आनंद लेते हैं स्वयं से, आत्म तृप्त है वो, और भगवान के अंदर कभी भी काम और क्रोध जैसे विकार हो ही नहीं सकते, क्योंकि काम उसको उत्पन्न होगा जिसके पास कोई वस्तु नहीं है उसको प्राप्त करने की इच्छा होगी। भगवान के अंदर ही सब कुछ है, तो भगवान को भला भौतिक वस्तुओं में क्या आकर्षण होगा, क्या काम उत्पन्न होगा। और जब काम ही उत्पन्न नहीं है, कोई वस्तु की इच्छा ही नहीं है, फिर भला क्रोध कहाँ से आएगा। ये विकार जो है वो केवल जीव के, मनुष्य जब बद्ध अवस्था में होता है ना तभी उसके, यहाँ तक कि भगवान का भक्त भी बन जाए ना? जीव यदि भगवान तो छोड़ो, अगर भगवान का भक्त भी बन जाएगा ना तो उस भक्त को भी कभी काम और क्रोध जो है वो स्पर्श नहीं कर सकते। हरिदास ठाकुर, उनके सामने माया देवी स्वयं अपनी माया का जाल बिछाने के लिए आई, लेकिन उनको अपनी साधना से रत्ती भर भी डिस्टर्ब नहीं कर सकी। जब भगवान के भक्त काम वासना से डिस्टर्ब नहीं होते हैं तो बोला भगवान कैसे काम और क्रोध के उसमें वश में आ सकते हैं। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भगवान के अंदर ना तो काम होता है ना क्रोध होता है, लेकिन यदि कभी हमको ऐसा दिखता है कि भगवान क्रोध कर रहे हैं, क्रोध करके शिशुपाल का वध कर रहे हैं, भगवान काम के वेग में संसार में दिखता है कि भगवान इतना विवाह करते हैं या जब रासलीला करते हैं, तो ये केवल और केवल अपने भक्तों को आनंद देने के लिए है, है ना। और यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं उसे तो परम आशीर्वाद यानी वरदान समझना चाहिए कि भगवान विभिन्न लीलाएं करके अपनी ओर आकर्षित करते हैं कि देखो तुम्हारी इच्छा की पूर्ति केवल मेरे द्वारा ही हो सकती है, इसलिए प्रेम करना है तो केवल मेरे से करो। और यही शिक्षा देने के लिए भगवान बार बार इस भौतिक जगत में आते हैं और सुंदर मनोहारिणी लीलाएं करके जीव आत्मा को अपने वास्तविक प्रीतम की ओर आकर्षित करने का प्रयास करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया साथ रहिएगा और मेरे लिए प्रार्थना करना मत भूलिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे तरीके से कर सकूं। हरे कृष्ण।